پہلے پڑھی
ہے
یہ والا
پہلے یہ والا تم ہی پڑھو. ہاں جی
بابا
سیبلنگ کا اوپر میں لوٹا چڑھاتے ہیں پانی گرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟
ہاں پانی کی لوٹی چڑھاتے ہیں. وہ لوٹی صرف پانی کی ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ڈالتے ہیں؟ دودھ بھی ڈالتے ہیں, دودھ تھوڑا سا نام ماتر اور پانی ڈھیر سارا. شیولنگ کے اوپر جا کر کے جو بھکت لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی لوٹی چڑھا دیتے ہیں پوری, کچھ بچا کے رکھتے ہیں کہ پوری لوٹی چڑھا دیتے ہیں, پوری لوٹی چڑھا دیتے. تو لوٹی میں جتنا سارا دودھ ہے, جتنا سارا پانی ہے, وہ لوٹ پوٹ ہو جاتا, بکھر جاتا ہے نا. یہ لوٹی کس کی یادگار ہے؟ لوٹی ہے ان کنیاؤں کی یادگار, ان ماتاؤں کی یادگار جن میں گیان جل گیان کا دودھ بہت کم ہے اور پانی ڈھیر سارا ہے. اسے لے جا کر کے شیولنگ کے اوپر ارپن کر دیتے ہیں. لنگ ہے وہ شریرداری کی یادگار جس میں وہ جوتی بندو پرویش کرتا ہے, سپریم سول. اور
ابھی ابھی جو مورتی میں آیا نا گپت گالی ہوتا ہے, کھلے ہم گالی, تم کچھے ہو مچھے ہو سورا ہوتا, یہ گپت گالی کیا ہوتا ہے؟
یہ گپت کا مطلب ہے اس کا ارتھ ہی نہیں کوئی جانتے کہ کچھ اوتار کیا ہے, متسیہ اوتار کیا ہے, ہے گریو اوتار کیا ہے, ارتھ تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے. مانوی اوتار کون کون ہے؟ منوشی کے اوتار بھی دکھائے ہیں رام اور کرشن, شیر کا اوتار بھی دکھائی دیا, کون سا ہے؟ نرسنگھ اوتار. تو ان کے ارتھ بھی تو سمجھنا چاہیے, سمجھتے ہیں تو گپت ہو گیا.
اچھا دوسری بات, مرلی کی جو شروعات میں بات آیا ابجیا کرنے والے اور نافرمان بدر کرنے والے,
فرمان
کرنے والے ان کو سزا ملے گا, تو ایسا کوئی ایگزامپل ہے جیسے کہ
نشچے پتر لکھتے ہیں, لکھتے ہیں کہ نہیں, اور اس میں کیا پرتیجیا کرتے ہیں؟
جی ہاں بابا, کوئی آتما نے اگر کوئی آتما ستو پردھان سٹیج میں سب کچھ ارپن کر دیتے ہیں اور پھر کچھ دن بعد بڑے پیار سے مدھوبن سے سمپرک میں رہتے ہیں, نمت ماتا بہن سے اچھے سمپرک میں رہتے ہیں, پھر کچھ دن بعد مدھوبن سے ٹکرا کے کارن نمت بہن یا ماتا سے ناراض ہو جاتے ہیں, تو پھر بولتے ہیں کہ بہن من مت کریے کہ اپنا چلائیے, اس لیے مدھوبن اور بہن کے ساتھ ہمیشہ ٹکرا استھتی میں رہتے ہیں. تو بابا اس طرح ان کے پیچھے گلانی بھی کرتے ہیں, تو بابا اس کا پرینام آگے چل کر کیا ہوگا؟
کیا ہوگا؟ وناش ہوگا اور کیا ہوگا؟ اور
بابا دوسرا سوال ہے, گیان میں چلنے والے پرانے بھائی یا ماتا اگر کرودھ میں آ کر یا اہنکار میں آ کر گیان چھوڑ اہنکار کو چھوڑ نہیں پاتے, تو آگے چل کر ان کا کیا
ان کا بھی وناش ہوگا؟ تمو پردھان کا کیا ہوگا؟ وناش ہوگا. ہاں زور سے بولو.
بابا جی بتائیں کون سی
मन की मौत से मन की मौत से रोग निकले वो
हाँ, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। खास करके ये बांधेली माताओं के लिए बोला है। माताएं बोल बोल करना नहीं छोड़ पाती, सहन भी बहुत करती है लेकिन बोल बोल जरूर करेंगी। तो बाबा ने कहा तुम मौन हो जाओ, तुम्हारे बोल बोल करने से कुछ फायदा तो होता नहीं है। तो जो मौन हो जाओगी तो मौन होने से तुम्हारा मन बहुत पावरफुल हो जाएगा, पावरफुल वाइब्रेशन काम करने लगेंगे। जैसे कोई अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, तो उनकी दूसरी इंद्रियां बहुत पावरफुल हो जाती हैं। हाथ से टच करने मात्र से ही किसी का नाम बता सकते हैं, आंखों से देखते भी नहीं, कानों से आवाज भी नहीं सुनते, तो टच करने की पावर उनकी इतनी जास्ती बढ़ जाती है। तो ऐसे ही बोला, ये बोल बोल करना बंद कर दो, क्या करो मौन हो जाओ, सबसे अच्छी चुप। फिर देखो थोड़े समय में क्या रंगत निकलती है।
हाँ ऐसा है ना, जब भी बाबा जब सामने नहीं रहते हैं तो यानी कि हम बहुत कुछ सोचते हैं कि बाबा आएंगे ऐसा पूछेंगे वैसा पूछेंगे ये बोलेंगे, जब बाबा जब सामने रहते हैं तो पूछते समय ऐसा क्यों फीलिंग होता है, हाथ में पसीना आना, हाथ मुंह कंपना, ऐसा क्यों फीलिंग क्यों होता है?
सबको थोड़े ही होती है,
और कुछ कुछ बातें ऐसे है कुछ बोलना कुछ चाहते हो और मुंह से आ जाता है कुछ और, ऐसे क्यों फीलिंग होता है?
वो भी डर जाते हैं,
मोटर को जलाने के समय पानी के मटके को फोड़ते हैं, मोटर को जलाने के समय पानी के मटके फोड़ते हैं, उसका
मटकी क्यों फोड़ देते हैं? ये सर जो है ना वो भी मटकी है, इसमें भी ज्ञान जल भरा रहता है। तो मुर्दा हो गया तो मटकी भी कैसी हो गई, चैतन्य रह गई या वो भी मुर्दा है? मुर्दा है। बहुत जगह तो मुर्दा जलाने के बाद सबसे कड़ा ये सर ही होता है, पूरा शरीर जल जाता है, सर जलता नहीं रह जाता है, तो लाठी मार करके उसको भी तोड़ देते। और
आज होली में बाबा,
अरे क्या 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 बोला?
2008 में जो सावन, 2008 के बाद में जो सावन संचालन में मुझे ये सूर्यवंशी में आएंगे या नहीं?
हाँ क्यों नहीं आएंगे, आज ही तो बोला मुरली में कि अंत समय में जो आएंगे वो लास्ट में आने वाले भी फास्ट जाएंगे हैं। हाँ ये है कि जो ऊंच पद पाने वाले हैं वो पहले पहले आ जाते हैं, बाकी ऐसे नहीं है कि सूर्यवंशी में जो आएंगे अंत तक। कुछ न कुछ पद जरूर पाएंगे, छोटा मोटा पद पाएंगे, कुछ नहीं तो साहूकार प्रजा में आ सकते हैं। पद नहीं पाएंगे तो क्या हुआ? बाबा ने कहा कि 16,000 की लिस्ट में आने से तो अच्छा है जन्म जन्मांतर साहूकार बनते रहे। साहूकारों के पास भी तो दास दासियां होते हैं, नहीं होते? होते हैं। जिनके पास बहुत धन होता है वो बहुत सुखी रहते हैं। और
बैल पर सवार नहीं करते
हैं?
बैल पर सवार नहीं करते
हैं, वो तो जानवर है ना। आज ही तो बताया ऊंचते ऊंचे भगवान है तो कच्छ मच्छ में आवेगा, कण कण में आवेगा, जानवर में आवेगा? हाँ, नहीं करते।
शंकर शंकर बैल पर सवार करते हैं।
हाँ,
तो शिव शंकर को तो मिलाकर एक कर दिया है ना।
हैं?
शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है तो शंकर शिव से क्या अलग है क्या?
तो किसने एक कर दिया है?
भक्ति मार्ग में शिव शंकर,
भक्ति मार्ग वालों ने, भक्तों ने अलग कर दिया है कि शिव बाबा ने अलग कर दिया है? और भक्ति मार्ग वालों ने अलग कर दिया कि एक कर दिया? तो झूठ क्यों बोलते? उल्टम पलटा ना बोलो।
दिल्ली में आया
है,
दिल्ली में आया है।
क्या आया है?
बैल के ऊपर सवार नहीं करते।
हाँ, शिव बैल के ऊपर सवार नहीं करते, वो तो बहुत ऊंचते ऊंचास्ती है।
शंकर बैल पर सवार करते
हैं। हाँ, शंकर बैल पर सवार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही पशुपतिनाथ कहा जाता है। जो पशु है, जानवर बुद्धि है, उनको भी नाथने वाला कौन है? जानवर होगा या भगवान होगा? जानवरों को कौन नाथेगा, कौन कंट्रोल करेगा? अरे, जानवरों को कंट्रोल जानवर करेगा। भगवान मनुष्यों को समझाता है। क्यों? क्या अंतर है मनुष्यों में जानवरों में? है, मनुष्यों में बुद्धि होती है समझने की और जानवरों में बुद्धि नहीं होती है। जैसे लिंग है, कलयुग में क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है। सत्युग में, त्रेता में कैसी स्टेज वाला? सतो प्रधान, त्रेता में सतो सामान, द्वापर युग में उसकी यादगार बनाते हैं। हीरक लिंग, हीरे का लिंग, स्वर्ण लिंग, सोने का लिंग सच्चा, रजत लिंग चांदी का, और द्वापर में आकर के ताम्र लिंग। उसमें भी क्रोध आ जाता है। और कलयुग के अंत में एकदम पत्थर बुद्धि। बाप की बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि। तो ऐसे पत्थर बुद्धि के द्वारा जो पार्ट बजाते हैं उसका गायन है। नेपाल साइड में कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ, जानवरों का भी पति। हाँ, तो बोलो।
हाँ,
बामन कहते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण का बिगड़ा हुआ रूप है बामन। वो 52 अंगुल का था, वो ब्राह्मण छोटे कद का था, 52 अंगुल का, बहुत लंबा चौड़ा कोई बड़ा आदमी नहीं था। छोटा बन करके आया राजा बलि के सामने। राजा बलि नहीं पहचान पाए ये जो छोटा है ये दुनिया में सबसे बड़ा है। उन्होंने सोचा छोटा मोटा ब्राह्मण है, थोड़ी बहुत जमीन मांगेगा तो जमीन दान में दे देंगे। ये थोड़े ही जानता था, ये तो मेरा सारा राज्य नाप लेगा, ले लेगा। तो गलत फहमी हो गई, अहंकार के वशीभूत हो गया राजा बलि। अहंकार में ऐसे ही हो जाता है। हाँ जी
बाबा, सेवा को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा
है,
सेवा को आगे बढ़ाने के लिए
है
कौन सा तरीका अपनाएंगे?
जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तन मन धन समय संपर्क संबंधियों की ताकत लगाएंगे तो सेवा जरूर आगे बढ़ेगी। हाँ जी
बाबा, हनुमान के हाथ में क्यों पहाड़ दिखाया?
क्या दिखाया?
हनुमान के हाथ में क्यों पहाड़ दिखाया?
हाँ, कहते हैं हनुमान पहाड़ ले आया, पहाड़ उठा के ले आया। पहाड़ बहुत बड़ा होता है ना, गया था संजीवनी बूटी लेने। अब संजीवनी बूटी का पौधा तो बहुत छोटा होता है, तो वो छोटा पौधा उसकी पहचान उनको नहीं हुई, तो सोचा कि जिस पहाड़ पर वो बताया है उस पहाड़ पर तो मैं आ गया, लेकिन छोटे पौधे की तो मुझे पहचान नहीं हो रही है, तो पूरा पहाड़ उठा लिया। पहाड़ ले जाऊंगा तो पहाड़ से वो जो वैद्य है वो अपने आप पहचान लेगा कि इसमें वो पौधा कौन सा है जिसमें संजीवनी बूटी है। क्या कह रहे
बाबा?
हाँ,
आज का मुरली में आया है बाबा के सामने, पढ़ाई पढ़ता फिर भी राजा ही नहीं, ऐसा क्यों हो?
हाँ, बाबा के सामने बैठता शरीर से और बुद्धि बाहर की दुनिया में लगी रहती है, तो बुद्धि से शूटिंग होती है या शरीर से शूटिंग होती है? हैं? बुद्धि से शूटिंग होती है। यहाँ तो बेहद की शूटिंग हो रही है ना, रूहानी शूटिंग हो रही है या जिस्मानी शूटिंग हो रही है? रूहानी शूटिंग हो रही है, रूह के द्वारा शूटिंग का कमाल हो रहा है। नहीं समझ में आया? हाँ
सूरज में कृष्ण बच्चे के लिए बड़ा ही बोलते गई ना
है,
कृष्ण बच्चे के लिए ना
सूक्ष्म अवस्था के लिए
ये बाबा ने बोला ना, ये ब्रह्मा तो बीच में इंटरव्यू कर देते ना।
हाँ,
मैं इनको नहीं पढ़ाता।
हाँ,
मैं इनको नहीं पढ़ाता।
नहीं,
मैं तो बच्चे को पढ़ाने आया।
तुम बच्चों को पढ़ाने आया हूँ, ये ब्रह्मा को थोड़ा ही पढ़ाने आया हूँ, ये तो बच्चा बुद्धि आत्मा है। ये बच्चा बुद्धि आत्मा होने के कारण ज्ञान की गहरी बातों को नहीं समझ सकता, इसलिए बीच बीच में इंटरफियर कर देता है। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप बातें करते हैं तो बच्चे बीच में बोलने लग पड़ते हैं, तो बोला मैं इनको नहीं पढ़ाने आया हूँ, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम बच्चे समझदार हो, बाप के बच्चे बुद्धिमान, बाप के बुद्धिमान बच्चे हो, सुनी सुनाई बातों पर तुम विश्वास नहीं करते हो। जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया में वहां बेसिक में अभी भी बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, माउंट आबू के गुरुओं के पास बैठे हुए हैं। वो सब के सब ब्रह्मा बाबा के चेले हैं। ब्रह्मा बाबा बच्चा बुद्धि, तो चेले भी वो सारे बच्चा बुद्धि।
बाबा आज बाबा ने मूल्य में बताया कि श्रीमत पर चलो और बाप की मददगार बनो, समझा के नहीं तो टोटल पड़ेंगे
हैं,
टो पड़ेंगे।
हाँ,
इसका मतलब क्या?
अरे जो बाबा डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना चाहिए ना, नहीं चलेंगे तो सोटे पड़ेंगे।
अच्छा बाबा,
हाँ जी,
पुरुषार्थी जीवन में
है,
जैसे पुरुषार्थी जीवन में
हाँ
सर्विस फील्ड में रहते हैं तो कोई कुछ बोल दिया हाँ तो वो बार बार अमृत वेले में याद आता है या क्लास में याद आता है हाँ, तो इसका प्रभाव विराट ड्रामा में क्या पड़ेगा?
देवान है तो याद आता है,
किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया कड़ी
हो, किसी ने कुछ भी बोल दिया, अपने मुख से बोल दिया या तुम्हारे मुख से पाप किया?
अपने मुख से,
हमारे मुँह से किया,
तुम्हारे मुँह से किया,
उसके मुँह से,
अपने मुँह से पाप किया ना, अपनी कर्मेंद्रियों से पाप किया ना, तुम काहे के लिए परेशान होते हो? कोई ने गाली दी, कोई ने ग्लानी की तुम्हारी, वो चिपक गई
तो हमारे ऊपर विराट ड्रामा में
ग्लानी चिपक गई। हाँ क्यों चिपक गई, उसका कारण ढूंढो, रुको, वो ग्लानी क्यों चिपक गई तुमको, क्यों तुम्हें रात भर बाबा की याद नहीं आई, बोई बोई बातें बार बार याद आती हैं? क्योंकि हमारे अंदर देहभान भरा हुआ है, उदय अहंकार हमको किसी की बात सुनने नहीं देता, हम अपन को बहुत ज्ञानी समझते हैं। ज्ञानी वो है जिसके अंदर सहन शक्ति की क्षमता हो, कितना भी डिससर्विस करने वाला हमारे सामने आ जाए, विपरीत बुद्धि विपरीत वाचा बोलने वाला, हम उसकी हर बात को सहन कर जाएं, उसको सुख देने का प्रयत्न करें, दुख देने का प्रयत्न न करें, उसका मुकाबला करके उसको नीचे गिराने की कोशिश न करें। ये ब्राह्मणों का सेवा धर्म है, सेवक, सेवक बन करके हम दूसरों के सामने ज्ञान सुनाने जाएं, गुरु बन करके नहीं। जैसे दुनिया भी गुरु होते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है उनको, गुरुओं को क्रोध आता है कि नहीं? उनसे थोड़े प्रश्न करो और फटाक से उनको जोर से क्रोध आ जाता है। हाँ,
कभी कभी भर्ती फील्ड से
हैं,
कभी कभी भर्ती फॉर्म से फील्ड सेवा करने वाले का नाम नहीं लिखा जा सकता, साकर बाबा को पता नहीं चलता, तो
भर्ती करने का
भर्ती जा करते हैं, जब भर्ती फॉर्म से फील्ड सेवा करने वाले सेवा का नाम नहीं लिखा जाता,
भट्टी करने वाले का नाम नहीं लिखा जाता,
भट्टी के फॉर्म से, भट्टी फॉर्म से जो सेवा करते फील्ड से,
भट्टी जब करने जाता है कोई तो उसको संदेश देने वाले का नाम नहीं लिखा जाता,
भट्टी के जब फॉर्म से
जो
सेवा के लिए
जाता,
भट्टी जो करने जाते हैं उनकी सेवा करने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक तो संदेश देने वाला होता है, नाम मात्र संदेश लिया, ज्ञान की गहराइयों को नहीं सुना, और दूसरे होते हैं उनकी जिज्ञासा करने पर उनके संशयों का आप छेदन करते हैं, उनको विस्तार में समझाते हैं, ज्ञान का जल देते हैं ताकि पौधा बड़ा हो जाए। तो जो ज्ञान का विस्तार समझाते हैं, गहराई से उनकी बुद्धि में बैठा दे, निश्चय बुद्धि बनाते हैं, वो टीचर हो गए उनके, स्थानीय लौकिक टीचर, स्थानीय टीचर हो गए। उन स्थानीय टीचरों का नाम अलग लिखा जाता है, संदेश देने वाले का नाम लिखा जाता है, और मधुबन में जो टीचर होती है उसका नाम लिखा जाता है। तो क्या कह रहे? अरे रुक,
जो भट्टी करने फील्ड से सेवा करते हैं उसका नाम नहीं लिखा है, जो भट्टी करने वाले लेकर जाते हैं।
अच्छा, लेके जाते हैं, लेके तो कोई भी जाएगा, पूरा ग्रुप तैयार हुआ है 17-18 लोगों का, तो कोई न कोई निमित्त बना दिया जाएगा, भाई रास्ता दिखा दो। कहां भट्टी करने जाना है? वो कोई ज्ञान की सेवा थोड़ी है।
आज की मूल्य पाठ है विपरीत बुद्धि तोवा तोवा, इसका अर्थ क्या है?
हाँ, विपरीत बुद्धि तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जो बाबा से विपरीत बुद्धि बनेंगे तो उनका क्या हाल होगा? हैं? दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तोवा का मतलब
है?
तोवा का मतलब
तोबा मुसलमानों का शब्द है। जैसे हम हिंदू लोग कान पकड़ते हैं ना, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ऐसे वो करते हैं तोबा तोबा तोबा।
भक्ति मार्ग में हनुमान को अमर दिखाते हैं।
क्या दिखाते हैं?
अमर दिखाते हैं।
अमर अमर दिखाते हैं।
तो वो ज्ञान मार्ग में वो हनुमान कौन है?
हनुमान को अमर दिखाते हैं। हाँ,
तो ज्ञान मार्ग में हनुमान कौन है?
वास्तव में रामायण में जो राम है उसको भगवान बता दिए। अब राम तो 14 कला संपूर्ण बताया, तो जो कलाओं में बंधा हुआ है वो भगवान है या देवता हो सकता है? हैं? हैं? देवता हुआ। वास्तव में रामायण में राम भगवान की होने की बात नहीं है, और भागवत में या गीता में कृष्ण भगवान होने की बात नहीं है, या महाभारत में कृष्ण के भगवान होने की बात नहीं है। महाभारत में, भागवत में या गीता में भगवान शिव है और कृष्ण जो है वो 16 कला संपूर्ण देवता है, बनने वाली आत्मा। 16 कला संपूर्ण बनने वाली जो आत्मा है, 16 कला संपूर्ण बनने से पहले राजयोगी था, मनुष्य योग लगाते हैं, तो वो अर्जुन की बात है ना? ऐसे ही रामायण में जिसको राम बताया है वो राम वास्तव में भगवान नहीं है, शिव भगवान है। और जो शिव भगवान है उनका बड़े से बड़ा सेवक वो ही राम है। क्या? जैसे महादेव में दिखाते हैं शिव का बड़े से बड़ा सेवक कौन है? नंदी। तो नंदी कौन हुआ? ब्रह्मा। पहला नंदी कौन हुआ जिसमें सवार करते हैं शिव बाबा? पहला ब्रह्मा कौन है? वो दादा लेखराज ब्रह्मा, तो बाद का ब्रह्मा है प्रजापति। तो दो बैलों की जोड़ी दिखाते हैं ना। जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तो दो बैलों की जोड़ी दिखाते थे, तो ये यज्ञ के अंदर दो बैलों की जोड़ी है। एक राम वाली आत्मा और एक कृष्ण वाली आत्मा, इनके लिए ये दिखा दिया है द्वापर युग से ये जानवर बुद्धि बनने लग पड़ते हैं। कौन कौन? राम वाली आत्मा भी और कृष्ण वाली आत्मा। अब वो जानवर का मुंह चाहे बंदर का दिखा दो चाहे गणेश का दिखा दो, है तो जानवर ना। तो ये रहस्य है ज्ञान के, मनुष्यों ने उनको जैसा तैसा समझ लिया। और है
अभी प्रकृति तम प्रधान है।
हाथ उठाओ। हाँ जी,
अभी प्रकृति तम प्रधान है।
द्वापर
प्रकृति
तमो प्रधान है। हाँ जी,
और शरीर भी तमो प्रधान है।
हैं?
शरीर भी तमो प्रधान।
शरीर माने प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है, वो भी तमो प्रधान।
लेकिन हम याद के आधार से आत्मा को पवित्र बनाते,
आत्मा को पवित्र बनाते हैं
बनाते, लेकिन सद्युग में ये सब पावन होगा, तो प्रकृति भी पावन होगा, संपूर्ण पावन, शरीर भी पावन होगा, आत्मा का पावन होगा। इतने कम समय में कैसे ये सब पावन बन जाएगा, प्रकृति शरीर और आत्मा तीनों।
आत्मा आत्मा पावरफुल बनेगी, तो आत्मा के नजदीक रहने वाला पहले पहले कौन है, सबसे नजदीक शरीर। तो इससे साबित होता है जो आत्मा सबसे जास्ती योगी होगी, सबसे जास्ती पावरफुल योगी होगी, तो उसके नजदीक रहने वाला कौन है, वो पांच तत्वों वाला शरीर, वो पहले पहले पावन बनेगा या नहीं बनेगा, है वो पहले पहले पावन बनेगा, उसके बाद फिर नंबर वार है, 108 और नंबर वार ढेर सारी मालाएं हैं, 500 करोड़ की भी माला है, मुख्य माला है 9 लाख की, तो जो 9 लाख माला की मणके हैं वो पहले अपने को सतो प्रधान बनाते हैं आत्मा को, उनमें से आधे ऐसे हैं जो इस शरीर को भी सात्विक बना लेते हैं, ये शरीर ही उनका सत्व प्रधान बन जावेगा, पहले हाँ 4.5 लाख का सत्व प्रधान शरीर बनेगा, तो वो बर्फ में ऐसी जगह दबेगा कि आत्मा प्रवेश करते ही सात्विक रूप में संसार में प्रकट होगा। जैसे बर्फ में कोई चीज रख दी जाती है, मान लो शरीर है वो कोई फल है और फल का हिस्सा कुछ सड़ गया है, तो जो सड़ा हुआ हिस्सा है वो पानी बन करके बह जाएगा, बहेगा कि नहीं, और जो शुद्ध है वो बचा रहेगा। तो ऐसे ही है, पहले शरीर शुद्ध बनेंगे किनके, जिन्होंने योग लगाया, और उन योग लगाने वालों के साथ जो भी रहे होंगे उनके ऊपर भी उनका संग का रंग लगेगा, ऐसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, सारी सृष्टि छोटे रूप में सात्विक बनेगी, पहले आत्मा सात्विक बनेगी बाद में शरीर बनेगा, क्यों पहले शरीर क्यों नहीं,
क्योंकि आत्मा योग लगाती
है। हाँ, आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है, ऐसे ही प्रकृति जड़ है, पांच तत्व वो बाद में सात्विक बनेंगे, लेकिन उस प्रकृति के पांच तत्वों को भी हमारी आत्मा को इस दुनिया में रहते रहते सत्व प्रधान बनाना है। जब तक प्रकृति को सत्व प्रधान नहीं बनाया, हमारा शरीर भी सत्व प्रधान नहीं बन सकता। हाँ जी,
मुरली में आया है ना, और प्रश्नों से पूछना है।
हाथ उठाओ,
प्रश्न पूछने से बाद प्रश्नों से होना चाहिए
है, प्रश्न पूछने के बाद उत्तर मिल गया तो प्रसन्न हो जाना चाहिए ना।
कचरा कैसे साफ हो जाएगा
प्रश्न पूछने से कचरा साफ नहीं होगा है, अंदर अंदर बुद्धि में प्रश्न आ रहा है, संशय आ रहा है, और संशय को छेदन नहीं किया जाएगा, नष्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर अनिश्चय बुद्धि बन जाएगा ना एक दिन, तो क्या करना चाहिए, कोई कचरा है तो बाहर, डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, शरीर के अंदर जो कचरा है वो ही तो बीमारी है, वो बीमारी को बाहर निकाल देते हैं। तो शिव बाबा बड़े थे, बड़ा वैद्य है, वो सृष्टि पर आया ही इसलिए है कि अंदर अंदर जो अनिश्चय बुद्धि के कचड़े भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गया, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो और धर्मों में कचरा ज्यादा है या कम है? है? और ज्यादा कचरा भरा पड़ा, झूठ ही झूठ। तो वो आत्माएं उस धर्म से कन्वर्ट होकर के यहाँ आई है बाबा के सामने, तो उनकी बुद्धि में उन धर्मों के संग का रंग का कचरा नहीं होगा। अब वो कचरे को नहीं निकालेंगी तो क्या होगा? जल्दी अनिश्चय बुद्धि बनेगी या देर में बनेगी? जल्दी अनिश्चय बुद्धि बन जाएगी। ज्यादा देर तक सूर्यवंशियों के साथ ब्राड ड्रामा में नहीं टिक पाएंगे। इसलिए होना तो ये चाहिए कि 84 जन्म हम सूर्यवंश में रहें तो बहुत सुखी रहेंगे। और हाँ,
भारत के जो भारत में डबने वाले हैं, अभी जो भारत में अप्रूव किए हैं कि भारत में डब 25 नीचे रहकर एक भाई ने जिंदा बच गया, तो भारत में हम लोग जब जाएंगे वो कितने साल रहे और कितना देरी लगे?
कोई कम रहेंगे, कोई ज्यादा रहेंगे। जो सतयुग के दूसरे जन्म में आने वाले होंगे, सेकंड नारायण के जमाने में आके जन्म लेंगे, वो 150 वर्ष तक बर्फ के अंदर दबे रहेंगे। ऐसे ही कोई आत्माएं लंबे समय तक बर्फ में दबी रहेंगी और कोई तुरंत आएंगे परमधाम से वापस।
अभी से टाइम है,
अभी जलमयी हुई कहाँ है? अभी मूसलाधार बरसात कहाँ हो गई जो सारी दुनिया में बर्फ हो जाए? अभी से कैसे काउंट करेंगे? हाँ, बेहद का बर्फ जाम होता जा रहा है। क्या संकल्पों में वो तीव्रता नहीं आने पा रही है? मनन चिंतन मंथन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब बुद्धि जाम हो रही है या खुल रही है? जाम हो रही है। एक मुरली में ये भी आया था कि आगे चल करके बाबा मुर्दा घाट बनावेंगे, यज्ञ के आदि में भी ऐसे होता था, सब सो जाते थे क्लास में। अभी थोड़े सोते हैं कि ज्यादा सोते हैं? अभी थोड़े सोते हैं, बाद में ऐसा भी होगा सारा क्लास मुर्दा बन गया, शमशान घाट बन गया। और है? अरे नहीं नहीं नहीं, बैठे रहो। हाथी का सूर क्यों दिखाते हैं? गणेश को हाथी का सूर क्यों
दिखाते?
हाँ, दिखाते हैं कि गणेश का जो चरित्र है वो हाथी की तरह है। क्या? मस्तक चौड़ा है, मन बुद्धि बड़ी विशाल है। जो गणेश का पार्ट है ब्रह्मा बाबा का है ना, तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि जब संपन्न बनेंगे, जब उनका चित्र बनेगा, चित्र संपन्नता की यादगार है, अधूरे पुरुषार्थ की यादगार है, तो जब वो संपन्न बनेंगे उनका मस्तक विशाल होगा, कान उनके बड़े हैं, इसका मतलब ज्ञान बहुत सुनते हैं। अभी भी बाबा कहते हैं सबसे पहले ज्ञान कौन सुनता है? ब्रह्मा बाबा सुनते हैं। उस समय वो सबसे जास्ती ज्ञान सुनेंगे, इसलिए शास्त्रों में ये कथा आती है कि जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ पहले पहले कौन विराजमान हो जाता? हनुमान विराजमान। माने वो सबसे जास्ती कथा सुनते हैं। ऐसे ही उनको पेट बड़ा दिखाया गया है, माने बुद्धि रूपी पेट उनका बहुत बड़ा है और सूंड से सारा काम कर लेते हैं। हाथ है उनके है, आगे की टांगे हाथ है ना, लेकिन वो सिर्फ चलने के काम करती है। हाथ जो है पकड़ने का काम सूंड करती है। बना सूंगा सांगी से ही वो जान लेते हैं कि ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है।
ब्रह्मा बाबा को मानते हैं।
हाँ,
और ये वो तो फिर 4.5 लाख लिस्ट में आते हैं।
हैं?
4.5 लाख लिस्ट में आते हैं।
अरे ब्रह्मा की गोद में सिर्फ चंद्रवंशी ब्राह्मण ही खेलते हैं कि इस्लाम धर्म वंशी, बौद्ध वंश वंशी, कृष्ण वंश, क्राइस्ट वंशी भी खेलते हैं।
सभी खेलते हैं।
तो फिर ऐसे क्यों कहते हो 4.5 लाख होंगे सिर्फ? वो 4.5 लाख तो सिर्फ 10% ही है
ना। ना वो तो हम बोलते जी, वो तो शिव भी याद करते रहे, वो तो पाप ध्वंस कैसे होता
है?
पाप विनाश कैसे होता है?
वो ब्रह्मा जो है वो लोग शिव बाबा को याद नहीं करते हैं।
हाँ।
तो फिर उनका पाप भस्म कैसे होगा?
वो ब्रह्मा में शिव बाबा को याद करते हैं, पाप उनके भस्म हो ही नहीं सकते। जब उनके गुरु के पाप भस्म नहीं हुए तो उनके पाप भस्म हो जाएंगे फिर?
तो फिर वो कहने का मतलब वो 4.5 लाख में कैसे आएंगे?
कौन?
वो
बीके वाले।
जो बीके वाले हैं वो सब एक जैसे हैं कि अलग अलग धर्मों के भी ब्रह्मा की गोद में खेले? तो फिर कुछ पक्के चंद्रवंशी हैं 10%, कुछ इस्लाम वंशी है, कुछ क्रिश्चियन वंशी है, कुछ बौद्ध वंशी है और वंशी है। तो एक कैटेगरी के ब्राह्मण नहीं है जो ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं। ब्रह्मा की गोद का रस लेने वाले 90% हैं, 10% सूर्यवंशी हैं, वो उनको जन्म देने वाले हैं। तो बाप अम्मा की गोद में खेलता है या अम्मा से लेकर बच्चों तक सबको गोद में खिलाता है? अम्मा की गोद में सब खेलते हैं बच्चे, कौन नहीं खेलता है परिवार में? सब खेलते हैं।
नहीं नहीं, बच्चे ही खेलते हैं, सब नहीं, बाप।
जो बाप है, बाप का बड़ा भाई है, जो सूर्यवंशी और हैं वो नहीं खेलते। सास है, ससुर है, वो खेलते हैं? वो थोड़े खेलते। हाँ, बच्चे खेलते हैं। तो बच्चे हैं 90% और बाकी सूर्यवंशी हैं 10%। अरे ऐसी कहा तो सुनने दो, कोई भूत आता है तेरे अंदर क्या?
भारत माता खुश से है, जन्म का नाता तेरे मिट्टी में जन्म लिया, तुमने हमको बड़ा किया, आपस में मिल काम करेंगे, तेरा ऊंचा नाम करेंगे, सांस मुझसे लेंगे।
और तेरे को किसी ने लंबा चौड़ा सिखाया? तू बैठ जा, बाद में अलग से पूछना। बैठ 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 बैठ। हाँ है, है
जो ज्ञान मांग
है,
जो फर्क है,
जो
फर्क है भक्त मार्ग और ज्ञान मार्ग।
हाँ,
फर्क है।
क्यों नहीं फर्क है? भक्ति रावण सिखाता है और ज्ञान एक शिव बाबा सिखाता है। रावण के अनेक सिर हैं भक्ति सिखाने वाले और राम को एक ही सिर है जो ज्ञान सिखाता है। तो एक ही मुंह की बात माननी चाहिए या रावण के अनेकों मुंह की बात माननी चाहिए? एक मुंह की मानना चाहिए। हाँ
अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर रह जाएंगे।
हाँ जी ठीक बात तो है। अंदर वाले 16 घंटे सेवा करें और बाहर वाले 8 घंटे सेवा करें तो बराबर हो जाएगा। तो अंदर वाले ध्यान से देखो, सब 16 घंटे सेवा करते हैं कि आपस में लड़ झगड़ करके और ही डिसर्विस करते हैं? क्या करते हैं? और ही वातावरण खराब कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अंदर वाले, बाकी ऐसे नहीं कि सब रह जावेंगे। अगर सब रह जावेंगे तो 8 कहां से निकलेंगे जिनके द्वारा राजधानी स्थापन होनी है? मना अंदर वालों में थोड़े ऐसे हैं जो रह जावेंगे और बाहर वालों में ज्यादा ऐसे हैं जो निकलेंगे और ऊंच पद पावेंगे। और हाँ
रुद्रगण और
है,
रुद्रगण और नंदीगण इसमें अंतर क्या है?
नंदी के कैटेगरी के जो रुद्र हैं वो नंदीगण के कैटेगरी के कहे जाते हैं। 11 रुद्रगण है ना, उन 11 में एक नाम नंदी का भी है, वो सबको कंट्रोल करता है। तो जो सबको कंट्रोल करने वाले स्वभाव संस्कार वाला है उसको फॉलो करने वाले बच्चे भी कैसे होंगे? कंट्रोल करने के स्वभाव वाले होंगे या कंट्रोल्ड होने वाले होंगे? कंट्रोल वाले स्वभाव के होंगे। ऐसे ही 10 और हैं, नंबर वार हैं। कोई में ज्यादा निश्चय बुद्धि और कोई में कम निश्चय बुद्धि। जिनमें जास्ती निश्चय बुद्धि होगी उनको संदेश मिलेगा भगवान आया है। तो जैसे नंदी अपना घर घाट माई बाप छोड़ करके कहां भाग गया? तुरंत है भगवान की शरण। ऐसे ही वो टिक नहीं सकते। बाप बाप नहीं, मां मां नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, फौरन उनकी बुद्धि में बैठता है कि साहब धोखेबाज, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हाँ
बाप के नजदीक रहने वाले बच्चे हैं उनका पाठ पहले गलती से तक
है।
जो बाप के नजदीक रहने वाले बच्चे हैं
उनका
पाठ पहले
पते के
तक तो शिव बाप मन को शरीर से रहने वाले या मन बुद्धि से रहने वाले?
हाँ ये परखने की बात है। ब्रह्मा बाबा की जो गोए गोद में खेले हैं और जिनको गोद का नशा है, हमने बाबा की मम्मा की गोद ली, वो शरीर से साथ रहे या मन बुद्धि से साथ रहे? हैं शरीर से साथ रहे तो कुकवंशावली ब्राह्मण कहे गए। और जो बुद्धि से साथ रहे ब्रह्मा बाबा के, उन्होंने ब्रह्मा बाबा के मुख की बात को पकड़ा या गोद का मजा लिया? है बात को पकड़ा। जो ब्रह्मा के मुख से बातें निकली वो शिव बाबा ऊंचते ऊंच बोल रहा है। ऊंचते ऊंच ब्रह्मा नहीं है, ऊंचते ऊंच कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा की वाणी को ध्यान से सुना तो वो बुद्धि से नजदीक हुए या शरीर से नजदीक हुए? बुद्धि से नजदीक हुए। यही बात है। बाबा ने आज जो नजदीक बैठने वालों की बात की वो शरीर से नजदीक बैठने वालों की बात की। बाबा के कंधे पर चढ़े रहे जिंदगी भर और सेवा रत्ती भर नहीं की। तो शरीर से नजदीक रहे یا بدھی سے نزدیک رہے؟ شریر سے نزدیک رہے. جیسے بہت سے ہیں آگے آگے وہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور سوئیں گے ایسے ایسے کر کے, اور آتے ہی بابا کے پاؤں چھوئیں گے. اب بتاؤ بھگت کے بچے راون کے بچے ہوئے یا رام کے بچے ہوئے؟ اے تو راون کی بات سیکھ لی. اور ہاں
میں جو ابھی جو برف
ہے
سیاچن میں جو ابھی جو درگھٹنا ہوئی بھارت کے جوان نے شہید ہو گیا, تو برف میں اندر دبی رہی وہ بھی ساری چھوڑ گیا, تو برف کے سیب رہے گا ساری تو اس کا نقصان ہو گیا.
ہاں
اس نے بولے ابھی جو درگھٹنا ہوئی برف نے سب تو دب گئے, تو ہم نے کیسے برف میں رہیں گے؟
ہم کیسے برف میں رہیں گے؟ شریر مردہ, مردہ چیز برف میں نہیں رہ سکتی. جس میں سے آتما نکل گئی وہ آتما پرم دھام پہنچ گئی. مردہ شریر رہ گیا وہ سرکشت نہیں رہے گا برف میں. بس جب آتما آئے گی تب کچھ پرکرتی کا پریورتن ایسا ہوگا کہ وہ برف وہاں سے ہٹ جائے گی, پگھل جائے گی, اور وہ شریر داری واپس آئے گا اور آتما اس میں پرویش کر جائے.
ایک جوان زندہ تھا پر اس کا کنڈی پنڈی فیل ہو گیا. ایک جوان میں زندہ تھا دس دن اندر برف میں, تو اس کا کنڈی فیل ہو گیا.
ہاں
وہ ساری چھوٹ گیا.
ہو گیا ہوگا ایسا مانا برف میں.
نہیں وہ تو یوگی نہیں تھا نا.
ہے
وہ تو یوگی نہیں تھا.
ہاں جی ہاں جی.
تو یوگی تو پاور فل ہوتا ہے, اس لیے برف سے وہ اس کا شریر پاون بن گیا.
ہاں جی ہاں جی.
پاون بننے کے بعد وہ رہ جائے گا. وہ لوگ تو یوگی نہیں تھے, پاون نہیں تھے.
ہاں جی ہاں. ارے رکو ماتا کی بات سن لینے دو. ہاں
بابا جو اشٹ رتن اشٹ دیو,
اشٹ دیو اور اشٹ رتن, ہاں
اس کا فرق کیا ہے؟
فرق کیا ہے؟ اچھا جو رتن ہوتے ہیں وہ ہیرا مانک پنا مونگا ہاں پوکھراج موتی ایک جیسی قیمت کے ہوتے ہیں یا کم زیادہ کی قیمت کے ہوتے ہیں؟ وہ پتھروں کی جاتی ایک جاتی ہے یا الگ الگ پرکار کی جاتی ہے؟ کوئی ہرے ہیں, کوئی لال ہیں, کوئی کیسے پیلے ہیں, کوئی کالے ہیں, ہیں کہ نہیں؟ تو جو اشٹ دیو ہیں وہ سب سولہ کلا سمپورن ہے. سولہ کلا سمپورن ہونے کے کارن پکے سوری ونسی ہے. سوری ونسی من ہیرا ہے, ہیرے باپ کی اولاد, ہیرو سمان پارٹ دھاری کی اولاد ہیں. گیان سوری کے بچے سوری ونسی ہیں. وہ سب سوری کی اولاد ہیں, سب دیوتائیں ہیں. کم کلاؤں والوں کو دیوتا کہیں گے کہ کھنڈت کہیں گے؟ کھنڈت دیوتا ہو گئے, ان کی تو پوجا ہی مندروں میں نہیں ہوتی. مندروں میں کھنڈت مورتی کی پوجا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو یہ رتن کیا ہے؟ رتنوں میں ایک ہیرا کو چھوڑ دو, وہ کتنا بھی توڑا جائے. ہیرے کو تراستے ہیں نا, کٹ 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 کرتے ہیں نا, تو بھی ہیرا ہی رہتا ہے. جتنا تراستے ہیں اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. اور رتنوں کا ایسا نہیں ہے, اس لیے وہ جو آٹھ ہیں وہ سب ہیرے ہیں, سب سوری ونسی ہیں. اور جو رتن ہیں کوئی اسلام دھرم میں ہے, کوئی بودھی دھرم کا, کوئی کرسچن دھرم کا, کوئی کس دھرم کا, بیٹھ جاؤ. ہاں پیچھے والوں کو دیکھنے میں نہیں آتا, بیٹھو. ہاں ہاں جی ہاں.
بیسک نالج میں جو
दो चार स्कूलों में शुद्ध आत्मा लिखा हुआ है, तो एक बच्चे को मैं नॉलेज दे रही थी वो शुद्ध आत्मा के बारे में, तो प्याज रसून उसने मैं बोला, तो वो बोला कि प्याज रसून अगर आमिष होता है तो लोग तो दूध पीते हैं, वो कैसे आमिष नहीं होता है मतलब।
बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। हाँ।
उसने बोला कि जो राजयोग में दिखाया है शुद्ध अन्न सत्संग दैव गुण, तो वो जो चार खम्भ है तो उसमें शुद्ध अन्न तो प्याज रसून को अशुद्ध मानते हैं।
कौन से रतन को?
प्याज और रसून को।
कहाँ पूज्य मानते हैं?
नहीं नहीं अशुद्ध मानते हैं।
अशुद्ध मानते हैं कौन?
बेसिक में
योग लगाने वाले।
तो फिर दूध कैसे अशुद्ध नहीं होगा?
अच्छा, प्याज में शुरुआत से ही पैदाइश से ही और लहसुन में पैदाइश से ही बदबू आती है कि नहीं है? बदबू आएगी ना, तो जिसमें जन्मजात बदबू है वो बदबू वाली चीज ज्यादा अच्छी है या जो जन्मजात शुद्ध है? बदबू का नाम निशान नहीं है, जिसे अमृत कहा जाता है वो अच्छी है। दोनों में अच्छी क्या है? हैं? दूध है, दही है, मक्खन है, हैं? मलाई है, घी है, ये तो अच्छी चीजें हैं। इनकी तुलना लहसुन और प्याज से कहाँ कर दी?
और जो मैं बच्चे को ज्ञान दिया है वो बच्चे मुझे सवाल किया है।
तो तुम अपना सवाल करो, ब्रह्मा मत बनो किसी का। हम ब्रह्मा बाबा हैं, उस बच्चे ने हमारे अंदर बात डाल दी, जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा के अंदर बातें डाल दी तो ब्रह्मा बोलता रहता है। हाँ, और
बाबा हम,
अरे पीछे वालों को भी बोलने दो, ओ पीछे बोल रहा कोई। हाँ
बाबा, हम पुरुषार्थ करके जब देवता बनेंगे तो हम जब चाहे बाहर तो बन सकते हैं ना एक मुहूर्त में?
हाँ, जब सदा काल अव्यक्त बन जाओगे, एक सेकंड के लिए व्यक्त भाव में नहीं आओगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी।
लेकिन भक्ति मार्ग में दिखाया गया कि भगवान भी वाहन का इस्तेमाल करते हैं।
भक्ति मार्ग में दिखाया कि भगवान भी वाहन का इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर वाहन होगा, सूक्ष्म शरीर पर सवार होकर के ऐसा पार्ट बजाएंगे। हाँ,
कोई आत्मा ऐसे भी है सूर्यवंशी होते हुए भी
श्रीमंत का
डिसीजन करते हैं, तो उनका आगे चल के क्या होगा?
उन्होंने बोला कोई कोई आत्मा सूर्यवंशी में है। हाँ, ये कैसे तुम्हें मालूम पड़ा सूर्यवंशी में है? हैं? बताओ, अरे तुम्हारे कान में किसने कहा कि ये सूर्यवंशी है? तुम्हें अपना पता चल गया? अरे अपना ही पता नहीं तो दूसरों को कैसे पता चलेगा? हाँ,
अव्यक्त वाणी में आया है विशेष बम्बे और दिल्ली में आदिरत्न ज्यादा है।
हाँ जी, ज्यादा है ये कहा, ये नहीं कहा पूरे हैं। हाँ, तो
ज्यादा है निकलते हैं और दूसरी जगह कोई नहीं निकलते।
दिल्ली चैतन्य में भी है या नहीं है? हैं? और बॉम्बे भी चैतन्य में है या नहीं है? बॉम्बे किसकी नगरी है? नाम बॉम्बे क्यों पड़ा है? हर हर बम बम की नगरी है, विनाशकारी नगरी है। क्या बोला अव्यक्तवाणी में? बॉम्बे है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी, तो क्वालिटी तो अलग अलग होगी ना। और स्थापना और विनाश करने वाली कारी चैतन्य की बात है या जड़ की बात है? चैतन्य आत्माओं की बात है। ऐसी ऐसी चैतन्य आत्माएं हैं जो स्थापना कर दिखाएंगी, ऐसी ऐसी चैतन्य आत्माएं हैं जो विनाश कर दिखाएंगी। विनाश काहे से होता है? है हाँ, विचार से होता है विनाश, और शिष्टाचार से होता है स्थापना, और है हाँ जी पीछे
राजधानी स्वर्ग यमुना का
राजधानी स्वर्ग नहीं कही जाती। स्वर्ग में कोई स्थान होगा जिसका नाम शास्त्रों में इंद्रप्रस्थ लगा दिया है, दिल्ली की तरफ ही दिखाते हैं। हाँ तो
स्थापित होता है
यमुना के कंठ पर स्थापित होता
है। हाँ, यमुना के कंठ पर राजधानी स्थापन होती है।
यमुना से गंगा पवित्र है,
यमुना से गंगा पवित्र,
गंगा पवित्र है
तो गंगा के कंठ पर स्थापित क्यों नहीं होता?
हाँ, पवित्र को पवित्र बनाना बड़ी बात है या पवित्र को पवित्र बनाना बड़ी बात है? तो वो ही भगवान का काम है। यमुना में सात बड़े बड़े नाले गिरते हैं, बहुत अपवित्र है, पूरे नालों में गंदी गंद बहती है। दिल्ली में जाके वो गिरते हैं यमुना नदी में, वो गंदा नाला का गंदा जल ही यमुना में नदी में ठहर जाता है गर्मियों के दिनों में। अभी भी जाके कोई देख सकता है वो गंदा पानी वहां ठहरा हुआ है। गंगा में ऐसा नहीं होता, गंगा के किनारे पवित्र सन्यासी रहते हैं। क्या कहा? गंगा के किनारे पवित्र सन्यासी अड्डा जमाते हैं, और यमुना के कंठे पर दिल्ली में जो सबसे जास्ती दुनिया के पतित बन जाते हैं सनातन धर्म वाले, वो भी हैं। और क्रिश्चियंस भी हैं बड़ी तादाद में, मुसलमान भी बड़ी तादाद में हैं, सिख भी बड़ी तादाद में है, बौद्ध भी बड़ी तादाद में। तो और धर्म वाले भी जो नीचे गिरते हैं, बहुत पतित बनते हैं, बहुत संतानें पैदा करते हैं, बहुत व्यभिचारी बनते हैं, बहुत डाइवोर्स देते हैं, वो भी दुनिया का एक ही शहर है जहां हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में भरी पड़ी है। तो यमुना नदी कचड़े का भंडार है, और भगवान को पतित से पतित दुनिया में ही आना है या पावन दुनिया में आना है? पतित दुनिया में ही आता है।
शिवरात्रि का दिन
है,
शिवरात्रि का दिन,
हाँ
शिवरात्रि का दिन जो कृष्ण का फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है,
केतकी का फूल जो चढ़ाते
हैं,
कोई देवी देवता का अपमान क्यों नहीं
चढ़ाया?
रुको,
शिवरात्रि में शिवलिंग के ऊपर केतकी जैसा फूल है वो चढ़ाते हैं, और कोई देवी देवता में नहीं चढ़ाते।
सही बात है, शिवलिंग के ऊपर अर्पण कौन होंगे? सबसे जास्ती पतित अर्पण होंगे या जो पावन है सन्यासी वो अर्पण होंगे? उसका नाम ही है कै माने कितने और तकी, कितनों कितनों को उसने जीवन में तका तक नहीं। अरे किनको किनको तक रही हो, हाँ डाइवर्स दिया नहीं, किनके किनके ऊपर तुम्हारी गहरी नजर है, किनको किनको तुम अपना बनाना चाहती हो। मना बाबा ने बोला वैश्याएं भी माला का दाना बने, ये रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं कि नहीं, और इनकी आदत पड़ जाती है व्यभिचारी बनने की अनेक रानियों के साथ, आदत पड़ जाती है या नहीं, बहुत आदत खराब हो जाती है व्यभिचारी बनने की। वो व्यभिचारी बने के संस्कार अगले जन्म में जब राजाएं स्त्री बनते हैं तो उन्हें स्त्रियों में व्यभिचारी बने के संस्कार आएंगे या नहीं, तो वैश्या बनेंगे या नहीं। हाँ सब एक जैसे नहीं है। नंबर 12 इसलिए बोला कि केतकी भी नाम दिया खास, पता नहीं किनको किनको तका है उन्होंने, किनके किनके ऊपर दृष्टि डाली है, ये भी मेरी वो भी मेरी जिसको देखा वही मेरी, क्या मेरी घरवाली है। ओम शांति।